इस प्रकार से लताओं से पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, और उन वृक्षों को कहती हुई बोलती है, ये ने परार्थ भवका यमनोनुकूला संसंतु कृष्ण पदवीम रहितात्मनान्न। हम कृष्ण से रहित हुई बड़ी दुखी होकर, हे वृक्षों तुम तो दूसरों के लिए जीते हो, बताओ हमारा कृष्ण कहां गया, वृक्षों बताओ। अर्थात जैसे तुम फल देकर के दूसरों के लिए जीते हो, ऐसे ही हमारी आराधना का परम फल, हमारे प्रेम का परम फल है कृष्ण, उसको देकर के हमारे लिए जीना तुम सार्थक कर लो। दूसरी सखी कहती है कि कहीं नहीं वो कृष्ण पृथ्वी पर ही होगा। कहने लगे अरे पृथ्वी बताओ, तुम बहुत आनंदित हो रही हो, क्या है कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने से इतना उत्सव मनाई हो, ये इस यह आनंद जो आज हम देख रही हैं तुम्हारे ऊपर, ये कृष्ण के अवतार का आनंद है अथवा तुम्हारा वराह से संस्पर्श हो गया था उसका तुम उत्सव मना रही हो, कुछ तो बताओ। नहीं नहीं तुम नहीं बताओगे। इतने में हिरणे दिखाई, हिरणी बताएंगी, अरे हिरणियों तुम बताओ, देखो तुमको देख करके हमें कृष्ण की आंखें याद आती है। नहीं नहीं तुमने ले जाकर कहीं कृष्ण को छिपा दिया है कि हमारी आंखों से सुंदर यदि कोई संसार में आंख है तो ये कृष्ण की है, इसलिए कृष्ण को छिपा कर रख दो, फिर हमारे से सुंदर और किसी की आंख नहीं मिलेगी। नहीं नहीं बताओ, अपने किसी सखा को लेकर वे जरूर उसके कंधे पर बाहें रख करके और तुलसी आदि की माला पहने हुए यहां कहीं पर वृक्षों के पीछे होंगी, तो हे पशु पक्षियों तुम बताओ, हे वृक्षों तुम बताओ, प्रणामम, हम आपको सबको प्रणाम कर रहे हैं। और नहीं नहीं हे वृक्षों तुम इतने झुके हुए हो मानो कृष्ण को प्रणाम कर रही हो, कृष्ण को प्रणाम कर रहे हो। और देखो वृक्षों, जैसे तुम्हारी हालत लताओं के बिना होती है और लताओं की हालत तुम्हारे बिना होती है, ऐसे ही कृष्ण के बिना हमारी है और हमारे बिना कृष्ण है। तुम तो प्रेम तत्व को जानने वाले हो, तुमको तो सोचना चाहिए कि जैसे हमारे आश्रय के बिना लताओं की क्या दशा होती है, ऐसे कृष्ण के आश्रय के बिना बेचारे इन गोपियों की क्या दशा होगी। इसलिए तुमको तो प्रेम करना आता है, हमें बताना चाहिए कि कृष्ण कहाँ है। इस प्रकार से वे उन्मत्त की तरह से कृष्ण का अन्वेषण कर रही है, भगवान की लीलाओं को गा रही है। गा क्या रही है, अनुचक्रुस तदात्मिका, वे तदात्मक होकर उसका अनुवर्तन कर रही है। कोई तो पूतना बनती है और कोई कृष्ण बनते हैं, कोई शक्टासुर बनती है कोई कृष्ण बनते हैं, कोई दैत्याकार होकर आह्वान करते हैं कृष्ण का गोप बालकों का और कोई कृष्ण बनते हैं। कहते हैं कोई खेलते हैं वत्सायंतिम हंति चान्या, कोई वत्सासुर बन रही है, कोई बकासुर बन रही है, कोई अघासुर बन रही है, और कोई कह रही है कि नहीं नहीं मैं कालिया नाग हूं, और कोई वहां कृष्ण बनकर के नाच रही है। मां भैष्णवात वर्षाभ्याम, एक सखी अपने हाथ में पत्थर लेकर कहती आओ आ जाओ, डरो मत, वायु से डरो मत, वर्षा से डरो मत, तो मैं मेरे इस गोवर्धन के नीचे आ जाओ, मेरे आश्रय में आ जाओ, इस प्रकार से वे कह रही है। उस समय में जितने जितनी लीलाएं उनको याद आती हैं कृष्ण की, सब लीलाएं करती हैं, और हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेव, तुम कहां गए, इस प्रकार से वे विलाप भी कर रही हैं। ऐसे भी विलाप करते 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 आगे जाकर देखी है, ए सखी इधर आओ, इधर आओ, आओ आओ, कृष्ण के चरण दिखाई दे रहे, आओ इधर आओ। तो एक सखी ने आवाज लगाई, सारी की सारी सखियां आई, अरे देखो ये कृष्ण का चरण है कि नहीं, ये नंद नंदन का चरण है, क्योंकि ध्वजाम्बोज वज्रांकुश यवादि भी, इसके चरणों में देखो ध्वजा का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, जो का चिन्ह है कि नहीं, हाँ यही है। तो यहां इसके चरण दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे पीछे चलो देखे कहां गया, यही कहीं छिपा हुआ होना चाहिए, देखो ये चरण, ये चरण, ये चरण, ये चरण। ऐसे देखते देखते कहा देखो यहां तो चार चरण दिखाई दे रहे हैं, शायद हमारे में से किसी एक को ये लेकर के आया है, कस्या पदानी, ये किसके पद है, ये किसके चरण है, हा हा, हम हजारों में से इस एक ने कोई विशेष रूप से भगवान की आराधना की होगी। अनया आराध तो नूनम, भगवान हरि ईश्वर है, भगवान ईश्वर की इसने आराधना की है। देखो ये आराधित है, ये सारी सखियों के बीच में जिसको लेके आए थे, अब कवियों की कल्पना है कि शायद वो राधा जी थी, और राधा नाम स्पष्ट लिया नहीं सुखदेव जी ने। क्यों नहीं लिया? कि राधा नाम से उनको उस समय में समाधि लग जाया करती थी, और सुखदेव जी महाराज का तो ये वचन था कि मैं 7 दिन तक पूरी भागवत कहूंगा परीक्षित से, तो कहीं उस नाम से समाधि लग जाएगी और कहेगा कौन, भगवान का वचन है, आदेश है, वो कैसे पाला जाएगा। अतः अनया आराधितो नूनम, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उन स्त्रियों ने कहा कि इसने जरूर आराधना की है भगवान की, कि हमारे बीच में भगवान कृष्ण ने इन्हीं के साथ प्रेम किया है। आहो धन्य आहो हम, ये बड़ी धन्य है कि जो भगवान के चरणारविंद ब्रह्मा को नहीं मिले, रमा को नहीं मिले, देवी को नहीं मिले, वो चरण इसको मिले हैं। और देखो देखो इतनी बात नहीं है, यहां इस कृष्ण के पंजे हैं वो कुछ मिट्टी में धंसे हुए लगते हैं। कारण क्या है? आओ यहां इसने प्रियतमा ने कहा है कि हमारे लिए फूल लाओ, तो ये उचक उचक करके लताओं से फूल तोड़ा है और फूल लाला करके इसको दिया है। देखो कुछ फूल बिखरे हुए पड़े हैं ना, और आगे आकर देखो, देखो सखी देखो, यहां इसका केस समारा है, और देखो यहां आगे आकर देखो, कृष्ण के पैर हैं वो मिट्टी में ज्यादा धंसे हुए हैं, यहां इसको अपने कंधे पर बैठा करके गए हैं। और इधर क्या हुआ, गोपियां तो यूं तलाश करती करती आ रही थी, और इधर जिस गोपी को लेकर श्री कृष्ण आए थे, उस गोपी के मन में ये भाव पैदा हुआ कि आह संसार में सब प्रेम करने वालों से हम गोपियां श्रेष्ठ हैं, और जितनी प्रेम करने वाली गोपियां हैं उनमें मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं। तो उस श्रेष्ठ भाव के आते ही उसने कहा कि अरे कृष्णा मेरे से चला नहीं जाता, मैं बहुत थक गई हूं। भगवान ने कहा अच्छा चल नहीं सकते तो आओ मेरे कंधे पर बैठो, चलो बैठो बैठो मेरे कंधे पर, स्कंधे आरुह्यताम, और कंधे पर बैठो। ऐसे करके भगवान झुके, और जो ही वो भगवान पर बैठने लगे तो भगवान उस समय में अदृश्य हो गए। अब वो बैठे किस पर, देखे भगवान तो दिखाई नहीं दिए। अब वो बैठी बैठी जोर जोर से विलाप करने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे मेरे प्रियतम तुम कहां जरे गए, तुम अपनी सन्निधि दिखाओ, हे कृष्ण मैं अकेली हूं, मेरा कोई नहीं है कृष्ण। ऐसे वो बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी, उन सखियों ने सुन लिया, सब के सब उसके पास आई और पूछी कि क्या बात है। उसने साफ साफ बात बता दी कि क्या बताऊं, मेरे मन में घमंड आ गया, मैंने देखा कि तुमसे मैं अच्छी हूं, तुमसे ज्यादा मैंने कोई आराधना की है भगवान की, कि कृष्ण मेरे से विशेष प्रेम करता है, वो हमसे अदृश्य हो गया। ओ हमारे वाली बीमारी तुम्हारे में आ गई थी, हम भी ऐसा ही कर रहे थे तब वो अदृश्य हो गया। अवमानं च दौरात्म्यात् विस्मयं परमं ययुः, इस प्रकार से उन सबको पता चला कि हमसे गलती हो गई, हमने माधव से मान प्राप्त किया और उस मान को लेकर के हमने उसको प्रेम में गला देना चाहिए था, वो मान लाकर कृष्ण के सामने खड़ा कर दिया, तो हमारे और कृष्ण के बीच में ये मान की रेखा आ गई। और अवमानम च दौरात्म्यात्, और वही हमारे अंदर दुष्टता आई कि हम कुछ श्रेष्ठ हैं, ये भाव ही दुष्टता हुई, ये भाव ही दुष्टता है, और इससे हमने कृष्ण का अपमान किया। आहो अब कृष्ण को ढूंढने लगे, अपनी गलती का ज्ञान हुआ, ढूंढते ढूंढते जहां तक चंद्रमा का प्रकाश था वहां ढूंढे, आगे तमे प्रविष्ट मालिक्ष, देखा कि आगे तो अंधकार है, वे वापिस लौट आई और वही यमुना नदी के किनारे वे कृष्ण के विषय में सोचने लगी, विचारने लगी। सच पूछा जाए तो परीक्षित, अब उनका मन कृष्णमय हो गया था, तन मनस का उनका मन कृष्णमय है, तदालापा उनकी बातचीत कृष्ण को लेकर हो रही है, उनकी चेष्टाएं कृष्ण को लेकर हो गई हैं, नहीं नहीं तदात्मिका वो तो कृष्णात्मक हो गई है, और कृष्ण का ही ज्ञान कर रहे, कृष्ण का ही ध्यान कर रही हैं, उनको अपने घर गृहस्थ की कोई याद नहीं आ रही है, और वे सब एक साथ इकट्ठी होकर कृष्ण के आगमन की आकांक्षा करती हुई अब सब एक साथ बोलती हैं। वो बोलती हैं कि जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वदत्रहि दैत दृश्यताम दिक्षुतावकास त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। अरे कृष्ण, तुम्हारे अवतार लेने से ये हमारा व्रज है यह शोभा संपन्न हो गया है, पहले से ज्यादा अच्छा हो गया है। होगा क्यों नहीं, हरदम जो लक्ष्मी है, शोभा है, इस व्रज के अंदर ही रह रही है। और हे हमारे प्राण प्रियतम, हम आपकी हैं इसलिए आपको देखना चाहती हैं, हम अपने प्राणों को तुम्हारे लिए अर्पित किए हुए हैं, अतः तुम्हें खोज रही है। तुमने हमको बहुत घायल किया है, बहुत हमें कष्ट दिया है, हम तुम्हारे उस प्रेम कटारी से कटे हुए ऐसे कर रहा रहे हैं कि कृष्ण जब तक तुम नहीं मिलोगे तब तक हमारी वो पीड़ा दूर नहीं होगी। कोई शस्त्र से मारना मारना ही नहीं होता है, कृष्ण कभी कभी आंखों से भी मारना मारना होता है। कैसा सुंदर तुम्हारा नेत्र, कमल के समान नेत्र, वो भी शरद ऋतु में खिला हुआ कमल, उस वैसा तुम्हारा नेत्र, और उस नेत्र से तुमने हमको देखा तो उस दृष्टि से हम सब घायल कायल हो गई। और हे सुरतनाथ, हे प्रेमनाथ, हम बिना मोल की आपकी दासियां हैं, जरा हम पर कृपा करो। हमारे पर कृपा करते आज कोई पहली बार ही ये बात नहीं होगी, तुम तो कृपा करते ही आए हो। देखो यमुना का विषैला जल था, उससे हमारी रक्षा की, सर्प से हमारी रक्षा की, इंद्र की वर्षा से हमारी रक्षा की, वृषासुर से हमारी रक्षा की, सब प्रकार से हमारे पर तो भय भय आ गए थे, तुमने हमारी रक्षा की, तो अब हम तुम्हारे बिना करा रही हैं, हमारी क्यों नहीं रक्षा करते हो। देखो तुम केवल एक यशोदा के बेटा हो, इतनी बात नहीं है, तुम्हारा और हमारा भी कोई न कोई रिश्ता है, क्योंकि तुम सबके हृदय में रहने वाले हो तो हमारे भी हृदय में रहने वाले हो, सबके तुम स्वामी हो तो हमारे भी तुम स्वामी हो, जब तुम सबके हो तो फिर हमारे क्यों नहीं, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। जो सबका है वही हमारा है, जो सब जगह है वही हमको यहां मिलेगा, जो सब समय में है वही अभी मिलेगा। तो आप सबके हो तो हमारे भी हो, सब समय में हो तो अभी भी हो, सबको मिलते हो तो हमारे लिए भी मिलो। सख उदयवान आप उदित हो जाइए, माने आपका अभाव नहीं होता है, आप केवल छिपने की लीला करते हैं, इसलिए आप प्रकट हो जाइए। सूर्य का जैसे अभाव नहीं होता रात्रि में, इसलिए प्रातःकाल सूर्य उदित होता है, ऐसे आप उदित हुए हो इस यदुकुल में संसार की रक्षा के लिए। आपका जो चरण है वो संसार के भय से भयभीत हुए प्राणियों की रक्षा के लिए है, इसलिए जिस हाथ को लक्ष्मी ने अपने हाथ में लिया है वही हाथ आप हमारे सिर पर क्यों नहीं रख देते हैं। हे ब्रजवासियों के कष्ट को दूर करने वाले कृष्ण, जरा आप हंस करके हमारी तरफ आ जाइए, हम आपकी दासी हैं, आप अपना हंसता हुआ चेहरा हमको दिखा दीजिए। प्रणत देही नाम पाप कर्षणम, जो शरणागत हो जाते हैं प्राणी उनके सारे पापों को आप मिटा देने वाले हैं। और आपके चरण इस समय में, आपके चरण इस समय में वन वन में भटक रहे हैं, हमें बड़ा कष्ट होता है कि उन चरणों में कहीं कंकर पत्थर लग जाएगा तो वो चरण आप हमारे शरीर के ऊपर रख दो तो दोनों को लाभ होगा। आपके तो चरणों में कांटा नहीं गड़ेगा और हमारे शरीर पर रख दोगे तो हम मर करके भी जी जाएंगे। और इतनी बात नहीं है, मीठी मीठी वाणी से आपको बोलना भी होगा और आपके होठों से जो अमृत टपकता है उस अमृत का पान भी कराना होगा। और कृष्ण, आप केवल हमें ही अमृत पिलाते हो ऐसी बात नहीं है, तव कथामृतं ताप्त जीवनं कवि विरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। आपका जो ये कथामृत है, ये संसार के तापों से जलने वाले लोगों के लिए जीवन का काम करने वाला है। बड़े बड़े ऋषियों ने, महात्माओं ने इस कथा को गाया है और इस कथामृत में स्नान किया है और अपने जीवन से सारी गर्मी, सारी संतति, माने सारी की सारी ऊष्मा, सारी पाप राशि समाप्त की है। सुनने वालों का सब प्रकार से ये मंगल करने वाला है आपका कथाख्यान। इसलिए संसार में जो आपके विषय में कहने वाले पुरुष हैं, आपके तत्व की ओर लगाने वाले पुरुष हैं, आपकी कथा को देने वाले पुरुष हैं, वे संसार में जितना देते हैं ऐसा देने वाला और कोई दूसरा दाता नहीं है। सबसे बड़े दाता वही है कि भूले भटके जीवों को आपकी ओर लगा दे। इसलिए महाराज वो सबसे श्रेष्ठ पुरुष है। आप तो वो प्रेम से हंसता हुआ चेहरा वो हमको दिखा दीजिए, हम उसका ध्यान करें। एकांत में बैठकर जो आप प्रेम से हमसे बात किए थे, अब आप छिप गए हैं तो हमारा मन क्षुब्ध हो गया है। जंगल में आप भटक रहे हो, शिल तृणांकुरई, और वहां जगह जगह आपको पत्थरों से, कंकरों से आपके चरणों को कष्ट हो रहा है, इसलिए आप जल्दी लौट आओ। सायंकाल के समय में आप गवों को चराकर सखाओं के साथ में वृंदावन में प्रवेश करते हैं, उस समय में हे वीर, हमारे मन में जो प्रेमोदय होता है, तुमसे मिलने के लिए जो एक आकांक्षा पैदा होती है, तुम्हारे बिना अब वो आकांक्षा हमारी बढ़ती ही जा रही है। तुम्हारे चरणों की पूजा लक्ष्मी ने की है, तुम्हारे चरणों का ध्यान बड़े बड़े ऋषियों ने किया है, तुम्हारे चरणों के ध्यान से सबके हृदय में उठने वाले संताप शांत हो गए हैं, वही चरण हमको क्यों नहीं दिखा देते। और आपका जो वेणु है, बांसुरी है, जिसको आपने बजाया है, वो बांसुरी का नाद ऐसा दिव्य है कि संसार का फिर कोई भी राग उसके सामने ठहरता नहीं है। इतर राग विस्मारणम निर्णाम, मनुष्यों का मन जगह जगह अटका हुआ रहता है, एक आपकी तान जब छिड़ जाती है तो सब जगह से मन हट करके उस तान के अंदर आकर के मस्त हो जाता है। इसलिए आपके बिना एक चुटकी भर का समय हमारे लिए बहुत लंबा हो रहा है। आ जाओ कृष्ण, आप देरी मत करो, हमें पति पुत्र कोई याद नहीं आ रहे हैं। हे अच्युत, इन सब की कोई स्मृति नहीं है, जल्दी तुम हमारे सामने आ जाओ और हमसे एकांत में बात करो। हमारे मन में तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है, हम सब तुमसे दुखी हैं। एकांत में बात करो, माने अपने प्रेमियों के बीच में जो बात करते हो वो बात हम लोगों से करो। हम हजारों की संख्या में हैं और हम हजारों के बीच में जो बात करोगे वो एकांत की बात होगी, क्योंकि प्रेमी लोगों के बीच में आपका हृदय खुलता है। इसलिए हम सब आप में प्रेम किए हुए हैं, हमारे सामने अपने हृदय को प्रकट करो। और हम बार बार कष्ट उठा रही है कि आपके चरण है, बहुत कष्ट का अनुभव करते होंगे इस कठोर जंगल में घूमने के कारण से। और हे कृष्ण, हमने हमारी आयु, हमने हमारा सब कुछ आपके लिए अर्पित कर दिया है, आप हमारे सामने प्रकट होइए। परीक्षित, गोपियां जब इस प्रकार से विलाप करने लगी, प्रलाप करने लगी और रुरुदु सुस्वरम राजन, और वे रोने लगी और बड़े स्वर के साथ रोने लगी। रोने में भी स्वर चाहिए। कैसा स्वर चाहिए? भीतर की पुकार चाहिए, वही स्वर है। ऐसे भीतर की पुकार से वे रोने लगी और कृष्ण के दर्शन की लालसा उनके अंदर जागृत हुई। तो भगवान भी बड़े विचित्र है, छिपते भी बड़े विचित्र है, तो प्रकट भी बड़े विचित्र ढंग से होते हैं। भगवान सहसा उन गोपियों के बीच में ही प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए, गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे बीच में ही तो अदृश्य हो गए और हमारे बीच में ही आप प्रकट हो गए, कैसी विचित्र लीला है आपकी। स्मयमान मुखाम्बुदय, भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट हुए, पीतांबर धारण किया हुआ है, वनमाला पहन रखी है और करोड़ों करोड़ों कामदेव के मन को भी मत देने वाले हैं। इतने सुंदर भगवान उनके बीच में प्रकट हुए और जो ही भगवान प्रकट हुए हैं उस समय में सबके चेहरे जो पहले मुरझाए हुए थे प्रकट होते उनके चेहरे खिल गए और उत्तस्थु सब खड़ी हो गई। सर्वास्तन्वे प्राण विवागतम, मानो सारे गोपियों को एक नया प्राण मिल गया हो, ऐसे गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गईं। किसी ने जाकर कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, किसी ने जाकर उनके चरण पकड़ लिए, किसी ने जाकर उनका रास्ता रोक दिया कि कृष्ण हमारे हाथ से अब तुम नहीं जा सकते, हमारे हाथ से हमने तुम्हारे चरण पकड़ लिए तो अब तुम अदृश्य नहीं हो सकते, अब हमने रास्ता बंद कर लिया, हम तुमको जाने नहीं देंगे। किसी ने देखा कि अरे ऐसी बात नहीं है, ये चला जाएगा तो चला जाएगा, इसका रूप जितना देखना है सब देख लो, हम हमारे ध्यान में मिल लेंगे। कृष्ण छिपना तुम्हारा काम हो सकता है लेकिन तुमको प्रकट करने का काम तुम्हारा नहीं है, तुमको प्रकट करने का काम हमारा है। जब भी हम याद करेंगे आपको प्रकट कर ही लेंगे, हमने मन से ही प्रकट कर लेंगे। तभी तो कवि ने कहा कि हृदया यदि निर्यासी गणयाम पौरुषं गणयामिते, हमारे हृदय से तुम निकलोगे तो भगवान हम जानेंगे कि तुम कोई सर्वशक्तिमान हो। हाथ छुड़ा के जा सकते हो भाई क्योंकि हम निर्बल हैं, लेकिन हमारे हृदय से निकलो तब जाने कि तुम कोई सर्वशक्तिमान हो, हमारे हृदय से तुम निकल नहीं सकते हो। इसलिए इनका ध्यान करके इनको हृदय में बैठा लो। एक गोपी है जो सामने खड़ी होकर के तिरछी तिरछी देखने लगी, मानो उपालंब दे रही हो कि तुमने हमको इतना कष्ट क्यों दिया, इतनी देर तक तुमने हमको अपना रूप क्यों नहीं दिखाया। प्रेम संरभ विभला, ये केवल प्रेम की लीला थी। कृष्ण को घूर करके देखना, कृष्ण को डांटना, कृष्ण से लड़ना, ये सब केवल प्रेम के अंतर्गत हो रहा था। इस प्रकार से सारी की सारी गोपियां जब कृष्ण से मिली है, उनका हृदय का संताप दूर हो गया। और ऐसे ही संताप दूर होता है जैसे किसी महापुरुष को प्राप्त करके सामान्य लोगों के संताप दूर होते हैं, ऐसे भगवान के दर्शन से उनके संताप दूर हो गए। ताभीर विदूत शोकाभीर, जब उनका शोक दूर हो गया और चारों तरफ से उन्होंने भगवान को घेर लिया, उस समय में भगवान की कैसी शोभा हो रही थी परीक्षित, जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर तो एक है और उसकी अनंत शक्तियां होती है, तो गोपियां तो सब शक्तियां हैं और उनमें पुरुष है ये भगवान, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर है। भगवान ने कहा आओ हम सब यमुना नदी के किनारे चलते हैं। यमुना नदी के किनारे उनको ले गए, कितना सुंदर स्वच्छ वो बालू है और बड़ी ठंडी ठंडी पवन बह रही है, चंद्रमा की किरणें हैं। कृष्णाया हस्त तरला चित कोमल बालुकम, और ऐसी कोमल कोमल वो बालू है जो यमुना के चंचल तरंगों के द्वारा वो बाहर लाकर के रखी हुई है, मानो यमुना ने स्वयं ने कृष्ण के लिए और कृष्ण के भक्तों के लिए वहां पर आसन बिछा दिया हो। तद दर्शन आह्लाद विधूत हृदय जय, गोपियों को तो श्री कृष्ण का पावन दर्शन मिला तो इतने से उनके सारे हृदय की जलन दूर हो गई। जैसे कोई श्रुतियां हैं वो ज्ञान को प्राप्त करके शांत हो जाती हैं। श्रुतियों में वेदों में 100,000 ऋचाएं हैं, 100,000 में 80,000 तो कर्म कांड की है, 16,000 उपासना कांड की है और 4,000 ज्ञान कांड की है, उसके बाद श्रुतियों का अंत है। इसी प्रकार से श्रुतियां जब ज्ञान कांड का वर्णन करके शांत हो जाती है तो इसी प्रकार से अब गोपियों का हृदय के अंदर जितनी ज्वालाएं उठती थी सब शांत हो गई। गोपियों ने अपनी ओढ़नियां थी, ओढ़नियां बिछा करके कहा कृष्ण यहां पर बैठो। क्यों भाई ओढ़नियां क्यों बिछाई, कि पहले न तो हमने इनके लिए कुछ बिछाने के लिए दिया, अरे हमारी कुछ भी चीज इसके पास रहेगी तो अब ये अदृश्य नहीं होगा। स्वीयर उत्तर ही अपने अपने उत्तरीय वस्त्र थे वो रख दिए और परीक्षित उनके कपड़े जिनके ऊपर भगवान बैठे हैं, कैसे विचित्र भगवान, बड़े बड़े योगेश्वरों के हृदय कमल में बैठने में संकोच करते हैं, भगवान को कोई संकोच नहीं आया, गोपियों के उन कपड़ों पर जाकर भगवान बैठ गए और त्रिलोकी का सर्व सुंदर पदार्थ वहां पर विराजमान है। अब गोपियों ने चारों तरफ से फिर घेर करके अब कृष्ण को अपने वाणी में फंसाना चाहा। कृष्ण से कहा कि देखो कृष्ण, इस संसार में कई प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो वे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक वो होते हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और तीसरे वे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। इन तीनों में आपको कौन सा अच्छा लगता है जी? इन्होंने देखा कि इन तीनों में से जो भी बात कहेंगे तो हम कृष्ण को तत्काल वहां पर अपनी वाणी में फंसा लेंगे। यदि कृष्ण कहेगा कि भाई प्रेम करने वालों से जो प्रेम करते हैं वो बड़े अच्छे हैं, तो कहेंगे कि तुम कैसे हो भाई, हम तो इतना प्रेम करते तुम हमारी परवाह ही नहीं करते। दूसरी बार ये यदि बात है कि प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते, ये बात कही जाएगी, वो कहेंगे ये आदमी बड़े अच्छे हैं, तो फिर कहेंगे कि यदि ऐसी बात थी तो तुम हमारे सामने प्रकट क्यों हुए। और तीसरी बात यह है कि यदि वो कहेंगे कि प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करें और प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम न करें, यदि ये बात भगवान कहेंगे तो हम उनको कहेंगे कि फिर तुम्हारी यहां क्या क्या आवश्यकता है संसार में, बताओ अवतार क्यों लेते हो। कहीं कहीं बोलेंगे और कहीं कहीं हम इनको फंसा लेंगे। भगवान इनके मन की बात जान गए। भगवान कहने लगे देखो सखियों, हम आपको बात बतावे, जो प्रेम करने वालों से प्रेम करता है वो तो स्वार्थी मनुष्य होता है, वो कोई धर्ममूलक प्रेम नहीं है। प्रेम किया तो प्रेम कर लिया और प्रेम नहीं किया तो नहीं किया। तो यहां पर जो प्रेम है ये बद्ध प्रेम नहीं है, ये बद्धमूल प्रेम नहीं है। ऐसा प्रेम ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं होता, स्वार्थार्थम ये तो केवल स्वार्थ के लिए होता है। और प्रेम नहीं करने वालों से भी जो प्रेम करते हैं, ऐसे पुरुष तो भाई बड़े कारुणिक होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। जैसे माता पिता, अब बालक क्या प्रेम करेगा मां बाप से जितना मां बाप प्रेम करते हैं। तो प्रेम करने वालों से प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करें, वो माता पिता जैसे कारुणिक होते हैं, ऐसे होते हैं वो। धर्मो निरपवादोत्र, ये प्रेम है ये किसी प्रकार की कामना को लेकर नहीं है, ये प्रेम की वृत्ति से प्रेम किया हुआ है। और प्रेम करने वाले और न करने वाले दोनों से ही प्रेम न करने वाले पुरुष होते हैं, ऐसे होते हैं आत्माराम पुरुष, जो अपने स्वरूप में रमण करने वाले हैं। उनके लिए ये हमारा प्रेमी है और ये हमारा प्रेमी नहीं है, ऐसे भावना ही पैदा नहीं होती, वहां दोपना दिखता ही नहीं है, एक अपना स्वरूप ही है। उसमें लीन रहने वाले वे किसी के साथ प्रेम करें न करें, इधर इनकी वृत्ति जाती नहीं। एक आप्त कामा, एक जिनके कोई किसी प्रकार की कामना नहीं है, सारी कामनाओं को जिन्होंने भस्म कर लिया है, ऐसे आप्त काम पुरुष होते हैं, वह दोनों की परवाह नहीं करते। तीसरे वो है कि भाई जिनको पता ही नहीं है कि हमसे कौन प्रेम करता है और कौन प्रेम नहीं करता, इसलिए बेचारे प्रेम नहीं करते, उनको पता नहीं है। और चौथे वो है कि जो गुरुद्रोही है, कृतघ्नि पुरुष है, वो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, नहीं करने वालों से भी नहीं करते, वो कृतघ्नि पुरुष है। परंतु सखियों, तुम जो मेरे को ये इस जाल में फंसाना चाहते हो, मैं ऐसे फंसने वाला नहीं हूं। मेरा प्रेम कुछ और ही ढंग का है भाई। नाहम तो सख्यो भजतो भी जंतुन भजाम नमीशाम अनुवृत्ति वृत्तये, मैं इनमें नहीं हूं। मेरा प्रेम ऐसा है कि वहां मैं उनकी चित्त की वृत्ति को बार बार लगाने के लिए प्रकट भी होता हूं और छिप भी जाता हूं। मेरे छिपने में भी प्रेम प्रकट करना है और मेरे प्रकट होने में भी प्रेम प्रकट करना है, इसलिए मैं इसलिए छिपता हूं कि ये और किसी से प्रेम न करें, मेरे से ही प्रेम करें। और इसलिए प्रकट होता हूं कि इनके प्रेम की कोई न कोई स्थिति, कोई न कोई आधार चाहिए, तो मैं आधार बनकर के तो प्रकट होता हूं और वृत्तियों को मेरे में लगाने के लिए मैं अदृश्य होता हूं। गोपियों, जहां तक तुम्हारा प्रश्न है, तुमने तो भाई अपने संपूर्ण लौकिक वैदिक सारे कार्यों को मेरे लिए अर्पित कर दिया है, तो सच्ची बात बताऊं गोपियां, तुमने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उस प्रेम के एहसान में मैं इतना डूब गया डूब गया डूब गया कि मैं तुम्हारे लिए मुंह दिखाने लायक नहीं था, इसलिए मैं जाकर छिप गया। और मैं परोक्ष था, तुमसे छिप गया, लेकिन तुमने मेरे से वैसे ही प्रेम करना चालू किया तो तुम्हारी प्रार्थना पर मैं प्रकट हो गया। गोपियों, प्रकट होता हूं तो भी मैं तुम्हारे सामने ऋणी हूं, और अप्रकट रहता हूं, छिपता हूं तो बैठ करके रोता हूं, मैं तुम्हारे ऋण को कभी उतार नहीं सकता हूं। प्रकट होने में भी तुम बड़े प्रेमी हो, और मैं छिपता हूं तब भी तुम मेरे से ज्यादा प्रेम करने वाली हो। तुम्हारा प्रेम तो मेरे पास ऋण के रूप में है। न पार ये हम निरवाद्य संयुजाऊ स्वसाधु कृत्यं विबुधायुष पिब यामा भजन दुर्जरगे श्रृंखला संवृष्ट तद्व प्रतियातु साधुना। हे गोपियों, तुमने जो मेरे साथ निष्कपट प्रेम किया है, निष्काम भाव से प्रेम किया है, नहीं नहीं केवल प्रेम करने के लिए ही प्रेम किया है, ऐसा जो तुमने मेरे पर जो महान उपकार किया है, इस उपकार के बदले में मैं तुमको देवताओं के समान आयु भी दे दूंगा तो अभी तुम्हारे उपकार का बदला उतरेगा नहीं। इतना ही नहीं, मैं अपने आप को भी तुमको दे रहा हूं तब भी मैं ऋणी का ऋणी हूं। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि भाई, जो एक दुर्जर गृह श्रृंखला, दुर्जर माने ऐसी कठोर वो घर गृहस्थ की सांकल है कि जिसमें सब बंधे हुए हैं, वो सब तुमने छोड़ करके मेरे से जो प्रेम किया है, वो ऋण है मेरे पर, वो ऋण मेरे अंदर ही समाप्त हो जाए, मैं आपको उतार नहीं सकूं, बस उतार नहीं सकता, मैं तुम्हारे सामने ऋणी हूं, तुम्हारे सामने एक अपराधी के सामने खड़ा हूं, जो दंड दे देने के लिए तैयार हूं। भगवान की ये बात सुनी तो गोपियों के मन में इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, जो उनका विरह जन्य ताप था वो वहीं पर शांत हो गया। और अब भगवान ने कहा, अच्छी बात है, गोपियों खड़ी हो जाओ, और मेरा जो दिव्य प्रेम, अरे तुम्हारा प्रेम मेरे पास आया तो अब मेरा प्रेम भी तुम ले हो। चारों तरफ गोपियां खड़ी हो गई, और भगवान ने देखा कि एक एक गोपी ने मुझे याद किया है, अब एक समय में याद किया है, तो भाई ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मुझे भी एक एक गोपी के साथ एक एक ही समय में रहना है। तो जितनी गोपियां थी, योगेश्वर भगवान सब गोपियों के बीच में एक एक रूप बनाकर वहां पर उपस्थित हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान, हजारों गोपियां हैं तो हजारों ही श्री कृष्ण है। अब वो ऐसी प्रेम की दिव्य लीला हुई है, प्रत्येक गोपी समझ रहे कि आह कृष्ण मेरे पास है, वो देख रही मेरे पास है। गोपियों की ये वृत्ति समाप्त तो होगी कि और भी कोई गोपी है क्या, और भी कोई कृष्ण का रूप है क्या, ये ध्यान ही नहीं रहा कि बस कृष्ण मेरे पास, मैं कृष्ण के पास हूं, कृष्ण मेरे पास है, ऐसा उनका अनुभव हुआ। और उस समय में सबके सब गोलाकार में वहां पर नाचने लग गए, उनका ये दिव्य रास हुआ तो आकाश के अंदर सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में विमान के अंदर बैठे हुए देवता लोग आए, बड़े उत्सुकता से इस रास को देख रहे थे। देखते देखते इतना आनंद आया, उन्होंने दुंदुभियां बजाई और फूलों की वर्षा की, और रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण की बारम्बार जय जयकार की। बोलिए आनंद कंद, उनके सब के नाचने के कारण से उनके आभूषण एक साथ झक 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 ऐसे आवाज आ रही थी। सप्रियाणाम सप्रियाणाम अभूत शब्द स्तुमलो रास मंडले, सब सखियों के सब उन गोपियों के आभूषण थे, नाचने के कारण से बड़ी विचित्र ध्वनि कर रहे थे, और उन सब के बीच में भगवान ऐसे ही सुशोभित हुए जैसे कोई मणियों के बीच में महामरकत मणि की शोभा होती है। पादन न्यासई भुज विदुति भी सस्मित भ्रू विलासई, अब वो नाच रही है तो नाचने में भाई पैर भी पड़ता है, एक पैर आगे है तो एक पैर पीछे है, तो भुजाएं हैं ऊपर नीचे हो रही है, वो सारा शरीर हिल रहा है, इस कारण से एक दिव्याति दिव्य शब्द है नाचने का, वो अपने अपने ताल और लय के अनुसार शब्द प्रकट हो रहा है। और बड़ा दिव्य नाद हो रहा है, बड़ा दिव्य रास हो रहा है, नाचना हो रहा है। और बहुत देर तक ये सब नाचते रहे, कृष्ण भी नाचते रहे, गोपियां भी नाचती रही। ऐसे नाचते 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 कई गोपियां हैं वे थक गई हैं, थक करके और वो कृष्ण के कंधे का सहारा लेकर खड़ी हैं। कोई कृष्ण के चरणों में आकर गिर गई हैं, कोई आकर कृष्ण के शरीर में जो हरिचंदन लगा हुआ है वो कहते हैं हरिचंदनम चंदनम आलिप्तम आग्रहाय, कहते हैं वो लिपा हुआ चंदन है, उस चंदन को सूंघ रही है। माने वे नास्ती 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 क्रिया शून्य होकर कृष्ण के अंदर समाविष्ट हो गई है। नृत्यंती गायती काचित कूचन नूपर मेखला, फिर भी वहां कईयों का नाच चल ही रहा है, नाच रही है, गा रही है, और उनके आभूषण कहीं गिर रहे हैं तो पता नहीं, और वे किसी आभूषण के ऊपर उनका पैर पड़ा हुआ है तो पता नहीं है, उनके कानों के जो आभूषण है वो गिर गए तो पता नहीं है। इस प्रकार से भगवान गोपियों के बीच में और गोपियां भगवान के बीच में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सच पूछा जाए तो परीक्षित, देखो जिस प्रकार से एक छोटा बालक अपने किसी कमरे के अंदर कई कांच लगे हुए हों, एक ही छोटा बालक अलग अलग कांचों में एक ही दिखता है और वो देख देख करके अपने प्रतिबिंब को देख देख करके नाचता है, हंसता है और आनंद का अनुभव करता है। ऐसी जितनी गोपियां हैं सब के सब भगवान के पावन संकल्प से ही तो पैदा हुई थी, उन सब के प्रेम के अंदर भगवान आनंदित हो रहे हैं, ब्रज सुंदरियों के साथ खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, देने में भी भगवान दे रहे हैं और लेने में भगवान ही ले रहे हैं। गोपियां ही भगवान है और भगवान भी भगवान है, और इनका रास हो रहा है वो भी भगवान है, और ये जो आनंद है रास का वो भी भगवान है, सब कुछ भगवान ही भगवान है। ऐसा दिव्य रास आकाश के अंदर जब फिर देवताओं ने देखा तो देवताओं के मन में आया कि जरा हम भी इस रास के अंदर प्रवेश करें, भगवान हमको भी अनुमति दे, लेकिन क्या करें, भगवान ने अनुमति दी नहीं है, ऐसा रास तो ऐसी गोपियों को ही प्राप्त हुआ है। धन्य गोपियां, उस समय में उन्होंने फूलों की वर्षा की, दुंदुभियां बजाई और इस रास के उन्होंने पावन दर्शन किए। कृत्वा तावंतम आत्मानम यावतीर गोपयोषित है रेमेश भगवानस्ता भी आत्मा रामो पी लीलया। हे कृष्ण, भगवान तो प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, वे अपने स्वरूप में रहने वाले, अपने स्वरूप में रमण करने वाले, उनके आनंद की अभिवृद्धि के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। और की आवश्यकता तभी होती है जब हमने हमारे आनंद में कोई कमी हो, लेकिन भगवान ने फिर भी लीला की है, लिए केवल प्रेमियों को आनंदित करने के लिए की है। और भगवान से पूछा जाए कि आपने क्यों ये लीला प्रेमियों को देने के लिए की, ना ना ना, हम तो आनंद लेने के लिए लीला करते हैं। प्रेमी होते हैं उनसे पूछा जाए क्या क्या आप ये लीला कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कि नहीं हम तो हमारे प्रेमी को आनंदित करने के लिए। तो इस प्रकार से इस लीला में केवल प्रेम ही प्रेम रहता है, यहां किसी प्रकार का मान नहीं है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, तभी ये दिव्य लीला हुई है। उसके बाद भगवान ने देखा कि ये सब नाचते 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 थक गई है, तो कहा आओ भाई अब यमुना के अंदर एक रास का और दौर कर लेते हैं। पृथ्वी को हमने रास से पवित्र कर दिया, अब जल को भी पवित्र करना है। अब भाई आकाश तो पवित्र हो ही गया, खाली जगह वो भी पवित्र तो हो गई, अब एक बार जल को भी पवित्र कर लेते हैं। देखो भगवान ने एक एक के ऊपर विजय प्राप्त की थी ना, तो जैसे माता पिता पहले तो बालक को डांटते फटकारते और फिर उसके साथ प्रेम करते हैं, इसी प्रकार से पहले तो वरुण देवता के बहाने से भगवान ने जल के ऊपर निग्रह किया, अब भगवान यमुना के अंदर अपने प्रेमियों के साथ गोपियों के साथ अंदर घुसते हैं और वहां पर एक दूसरे के ऊपर जल छिड़कते हैं। आकाश के अंदर रहने वाले ब्रह्मा आदि देवता सब इस दिव्य रास को, जल के अंदर के रास को देख रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं और दुंदुभियां बजा रहे हैं। इस प्रकार से ततश्च कृष्णोपवने जल स्थल प्रसून गंधा नीलजुष्ट तटे, जल को थल को और सबको वे भगवान अपने इस लीलाओं से पवित्र कर रहे हैं। और पवित्र करने के बाद फिर जो है भगवान उन सबको कहे कि अच्छी बात है भाई, अब सब आप लोग अपने अपने स्थान पर चले जाओ। इस प्रकार से उस चांदनी रात में दिव्य रास हुआ और भगवान की आज्ञा से सब अपने अपने स्थान पर चले गए। परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये क्या बात है, ये कैसा प्रेम है, भगवान तो यहां धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए थे, उन्होंने प्रतीपम आचरत, ये उल्टा काम कैसे किया, कौन सा भाई, कि पर दारा भी मर्शनम, दूसरे की स्त्री का उन्होंने हाथ कैसे पकड़ा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अरे परीक्षित, दूसरे की स्त्री का हाथ पकड़ना महान पाप है, अपराध है, लेकिन किन के लिए है कि जो यहां इस मर्यादा के अंदर रहने वाले उनके लिए है, भगवान के लिए कोई दूसरा है? अरे ये गोपियां भगवान में से ही प्रकट हुई, ये गोपियां थी कौन? ये वेद की ऋचाओं ने एक बार एकता करके भगवान से कहा महाराज हमारी क्या दशा होगी, कि क्यों हमने तो निषेध किया कि ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, तो फिर कौन ब्रह्म है, हम क्या बतावे? कह रहे भाई तुम आ जाना हमारे द्वापर युग के अंदर, जब हम कृष्ण बने तब सब गोपी बनकर आ जाना, तुम उसके बाद कहने लग जाओगे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो ब्रह्म है, परात्पर है वो ब्रह्म है, गुणों से अतीत है वो ब्रह्म है, उसके बाद तुम है रूप से कहने लग जाना जो वसुदेव का बेटा है वो ब्रह्म है, जो नंद नंदन है वो ब्रह्म है। तो वे गोपियां ही तो आई थी। और दूसरा परदारा भी मर्शनाम, ये पृथ्वी के अंदर रहने वाले जो प्राणी है मनुष्य है उनके लिए इसी मर्यादा का पालन करना चाहिए, कभी भी किसी की स्त्री का इस प्रकार से इस रास का अनुकरण करके कभी कोई ऐसा काम न करे जिससे कोई धर्म की हानि होती हुई दिखती हो। देखो देखो कभी कभी धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन होता हुआ दिखता है, तो वे महापुरुष ही ऐसा कर सकते हैं, दूसरे को अपने मन से भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई देखे कि कृष्ण ने भी ऐसा किया हम भी करें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जैसा तेज तुम में नहीं, कृष्ण जैसी सामर्थ्य तुम में नहीं, कृष्ण तो सबकी आत्मा है। क्या तुम सबकी आत्मा हो? कृष्ण तो आपने उस रास के लिए दिव्य मन बनाए थे, क्या ऐसा दिव्य मन बना सकते हो? दूसरा कृष्ण तो अवरुद्ध सौरथ थे, क्या कोई दूसरा अवरुद्ध सौरथ हो सकता है? महापुरुषों के वचनों का पालन करना चाहिए परीक्षित, उनके आचरणों में वही आचरण ग्राही है जिन आचरणों से हमारे जीवन में कोई विलक्षण प्रेरणा मिलती हो, और जिन आचरणों में हमारा कहीं संदेह होता हो ऐसे आचरण करना नहीं चाहिए। अरे कोई कहे कि बड़े आदमी ने किया वैसा हम सब कुछ काम करेंगे, तो हमने तुमको सुनाया था कि शंकर ने हलाल जहर पिया मरे नहीं, तुम पी के देख लो मरते हो कि नहीं। विनश्यत्याचरण मोढ़ यथा रुद्रो अभिजम विषम, कोई मूर्खता से बड़े आदमियों की हर बात का अनुकरण करने लगेगा तो वो मर जाएगा, यदि शंकर भगवान के समान कोई जहर को पिएगा तो मर जाएगा। देखो अग्नि है उसमें जो चीज डाल देते हैं सब भस्म हो जाता है, क्योंकि अग्नि में ऐसा सामर्थ्य है, लेकिन ऐसा और किसी में सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसा किसी में सामर्थ्य होता है वही ईश्वर होता है, वही ऐसा कर सकता है, दूसरे को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर देखो परीक्षित, भगवान की इस लीला में कभी दोष भी नहीं देखना चाहिए, क्यों कि यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विदुता खिल कर्म बंध स्वैरम चरान्ति मुनयोपि न नय्यमानास तस्येच्छया तवपुष कुत एव बंध। जिनके चरण कमलों के पराग का सेवन करने के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हृदय से कालुष्य सदा सदा के लिए दूर हो गया था, ऐसे भगवान के अंदर कोई विकार की कल्पना करे, किसी प्रकार से परदारा भी मर्शन के कलंक को लगावे, तो भाई यह तो उसका खुद का जो दोष है वही कृष्ण के ऊपर दिख रहा है। निज अज्ञान राम पर धरही, अपना दोष राम जी में दिख रहा है, तो दोष तो हमारा है, राम जी इतने स्वच्छ हैं कि हमारा दोष उनके अंदर दिखता है, हम कह लगते हैं राम जी में ये दोष है। राम जी में दोष नहीं है भाई, तुम्हारे बोलने वाले में दोष है, मानने वाले में दोष है। कौन कहता है कि परदारा विमर्शन भगवान ने करके ऐसा कोई धर्मातिक्रमण किया? अरे भगवान तो गोपियों के स्वामी है, गोपियों के पतियों के स्वामी है, और सबके हृदय में रहने वाले हैं। उन्होंने जो दिव्य रास किया इसका फल क्या हुआ मालूम है? जितने वे स्त्रियां जितने जिन जिन की वे स्त्रियां थी, जिन जिन की वे माताएं थी, और जिन जिन के वे जो कुछ भी लगने वाले थी, सब गोपियों के कारण से धन्य हो गए। न तो उन गोपियों ने कभी दोष देखा, न उनके पतियों ने कभी दोष देखा, न कभी नंद जी ने दोष देखा, न और किसी ने दोष देखा। तो तुमको तो कथा इसलिए सुनाई जा रही थी कि तुम्हारे मन में तुम्हारा मन का पाप दूर हो जाए, और तुम उसको भगवान पर देखना चाहते हो? कभी मत देखना, ना सुयन खलु कृष्णाय, कृष्ण के ऊपर कभी भी ऐसा दोषारोपण नहीं करना। स्वान स्वान द्वारान व्रजऊ कस है। कहते हैं वे ही पति लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हमारी स्त्रियां तो हमारे पास ही हैं, तो वो स्त्रियां कौन सी थी जिनके साथ रासलीला की, कि वे स्त्रियां भगवान में से ही प्रकट हुई थी। तो ये जो भगवान की जो रासलीला है ये इतनी शुद्ध रासलीला है, इतनी विशुद्ध रासलीला है परीक्षित, इसको जो भी कोई सुनता है उसके हृदय में दो प्रकार की बीमारी, एक तो हृदयगत बीमारी हार्ट की बीमारी, वो हार्ट की बीमारी दूर होती है, और दूसरी उसके मन में रहने वाले जन्म जन्मांतर के पाप है वो दूर हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण के मन में किसी प्रकार का विकार होता तो विकारी की बात सुनकर के विकार बढ़ता है कि घटता है, विकारी की बात सुनकर के तो विकार बढ़ता है, लेकिन इतना निर्विकार ये प्रेम है कि इस प्रेम से तो सुनने वालों का विकार दूर होता है और सब प्रकार से वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करके आत्मकल्याण को प्राप्त हो जाता है। सुखदेव जी महाराज ने देखा कि परीक्षित ने इस रास पंचाध्याय रास प्रकरण के अंदर प्रश्न दूसरा कर दिया, तो अब ये जान करके दूसरे प्रसंग में जा रहे हैं, लेकिन भाई सुखदेव जी ऐसे दिव्य रास के अंदर अपने दिमाग को लगाए हैं कि जान करके प्रसंग को घुमाते हैं लेकिन वापिस वो रास लीला का ही प्रसंग आ जाता है। पांच अध्याय तो पूरे हो गए, अब देखा कि जाने इस रास से हमने तो इतनी बढ़िया बात बताई, परीक्षित ने कभी किसी प्रकार से भगवान में दोष नहीं देखा है, लेकिन परीक्षित के बहाने और कोई दोष देखेगा, इसलिए इस प्रसंग को एकदम कट करके उसको बंद करके अब नया प्रसंग कर रहे हैं कि एक बार की बात है। एकदा देव यात्रायाम, एक बार की बात है भाई कि ये ब्रजवासी पार्वती की उपासना करने के लिए सरस्वती नदी के किनारे गए, भगवान पशुपतिनाथ की उन्होंने पूजा की और वहां पर वे रहे, तीन रात्रि रहना चाहिए किसी भी तीर्थ में जावे तो वहां पर वे सब लोग गए थे, ब्राह्मणों को खूब दान दिया, और कहते हैं कि रात्रि के अंदर एक सांप आया, उस सांप ने आकर के नंद बाबा को डस लिया। अब उस सांप को भगाने के लिए ब्रजवासी कोई तो जलती हुई लकड़ी लावे कोई क्या करे, लेकिन वो सांप तो उनसे दूर हुआ नहीं। इतने में आकर कृष्ण से कहा कि कृष्ण कृष्ण अरे देखो बड़ा भारी सांप तुम्हारे बाप को ग्रस रहा है। भगवान आए और आते ही सांप के लात लगाई, लात लगाते ही सांप तो रहा नहीं, एक दिव्य पुरुष वहां पर उनके सामने उपस्थित हुआ, और जब दिव्य पुरुष उपस्थित हुआ तो भगवान ने पूछा अरे भाई तुम कौन पैदा हो गए, कौन प्रकट हो गए, कौन हो तुम? कि महाराज आप सब जानते हो मैं एक विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है, मैंने एक बार ऋषियों का अपमान कर दिया, मैं सुंदर होने के कारण से कुरूप ऋषियों का अपमान किया तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जाओ तुम पाप योनि में चले जाओ, तो सबसे निकम्मा ये सांप होता है तो मैं महाराज सांप बनाऊं। उन्होंने मुझे कृपा करके ये बात कही थी कि जाओ तुमको भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिलेगा तो तुम वापिस मुक्त हो जाओगे, तो महाराज मैं आपके चरणों की शरण में आया हूं, आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त किया हूं, इस कारण से मैं मुक्त हो गया हूं, मैं आपकी शरण में हूं। महाराज ब्राह्मण का जो दंड होता है वो भी भगवान को मिला देने वाला होता है, और यदि ब्राह्मण का आशीर्वाद लेवे तो कितना कितना बड़ा लाभ मिले भाई, इसके कोई सीमा नहीं है। तो महाराज सद्य पुनादि किम भूयस तस्य स्पृष्ट पदाहिते, आपके चरणों से कितना पवित्र हो गया हूं ये तो महाराज अब आप ही जानते हैं, अब आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। कहते हैं उसके बाद वो स्वर्ग में चला गया। एक दिन की बात है, अब देखो वापिस वो रासलीला की तरफ आ रहे हैं। एक दिन की बात है कि बलराम श्री कृष्ण और साथी लोग ब्रजबा ये रात्रि के समय में गए जंगल में, वहां उन्होंने बांसुरी बजाई और बांसुरी बजाते ही उस समय में सब के सब गोपियां अपने अच्छा अच्छा कपड़ा पहनी हुई, सब प्रकार से आभूषण पहनी हुई वहां आई। आज जब वो आ रही थी तो शंखचूड था एक कुबेर का सेवक, उसने देखा कि जब भी बांसुरी बजती है और ये कृष्ण बजाता है उस समय में गोपियां दौड़ी दौड़ी आती है, जरूर ये गोपियां बहुत सा अच्छा अच्छा आभूषण पहनती हैं तो चलो इनके आभूषणों को हम लूट लेंगे। तो जिधर से गोपियां आ रही थी ये शंखचूड़ वहां खड़ा हो गया, उसी मार्ग में खड़ा हो गया और उनका आभूषण लूटने लगा। तो जब इस प्रकार से उनका आभूषण लूटने लगा और उन सबको भी एवं विक्रीड तो स्वेरम गाय तो सब प्रमत्तवत, तो और उन गोपियों को उसने प्रमदा जनम क्रोशंतम जब वो लूटने लगा, उनको डराने लगा, धमकाने लगा, तो गोपियां चिल्लाई। जब वो चिल्लाई तो बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों के दोनों भगे। तो कृष्ण फिर उन दोनों को अपने पीछे आता देख करके वो शंखचूड वहां से भगा। भगवान ने कहा, देखो जी भाई जी, आप इन गोपियों के पास में रहो, अब शंखचूड को मैं देखता हूं। अब वो शंखचूड के पीछे पीछे गए भगवान। भगवान पीछे पीछे गए, बहुत दूर आगे गए, तो आगे जाकर के उस शंखचूड को भगवान ने मार दिया। भगवान ने मार दिया तो उसके सिर के ऊपर एक मणि थी, वो मणि वो ले आए और मणि ला करके और उन्होंने बलराम जी को दे दी कि लो भाई जी, उसको मारा था, ये मणि हमको मिली है, मणि आप रखो। सब पश्यन्ति नान च योषिताम, सारे स्त्रियों के सामने भगवान ने वो मणि बलराम जी को दे दी थी। ऐसी भगवान की लीलाएं हुई थी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपिया कृष्णे वनम याते। कभी कभी क्या होता कि भगवान श्री कृष्ण जब चले जाते वन में, तब वे गोपियां कृष्ण की लीलाओं को बैठ करके गाया करती थी। अब ये वेणु गीत है, इसको युगल गीत भी कहते हैं। माने युगल गीत इसलिए कि दो दो श्लोक है, इसमें दो श्लोकों में एक तात्पर्य है, तो इसलिए तो युगल गीत कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें वेणु को लेकर, उनकी बांसुरी को लेकर के कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत प्यारी है, इस कारण से उसकी जो तान है, उसकी जो आवाज है, वो सबके हृदय को आकृष्ट करने वाली है। तीसरी बात यह है कि भक्त का और भगवान का मिलना शब्द के द्वारा ही होता है। जब गुरु महाराज शब्द देते हैं, संत महात्मा शब्द देते हैं, तो शब्द को सुनते हैं, तो शब्द सुनने के बाद में हमारे मन में भक्ति जागृत होती है। तो ऐसे ही भगवान के और भक्त के बीच में शब्द का साम्राज्य है, शब्द एक कड़ी है। तो मुरली से जो शब्द निकलता है, वही शब्द, शब्द तो निकल रहा है जंगल में और ब्रज के अंदर उस शब्द को सुनती है, तो उनके मन में भगवान से मिलने की, दर्शन करने की आती है। इसलिए सब शब्द की महिमा है, तो उस शब्द की महिमा के कारण से अब ये बांसुरी की महिमा कहते हैं। कृष्ण लीला प्रगायंत्यो निन्युर दुखे न वासरान। कृष्ण तो है नहीं, शब्द उन्होंने सुन लिया, अब वे आपस में बात करती हैं। गोपियां कहती हैं कि वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरदरार्पित वेणु कोमलांगुली भिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद है व्योमयान वनिता सह सिद्धई। ए गोपी, जब श्री कृष्ण अपने बाएं हाथ पर अपना बायां कपोल रखता है और अपने होठों के ऊपर दाहिने हाथ से मुरली रखकर और उसमें अपना श्वास भरता है, अंगुलियों को नचाता है, उस समय में आहा, ऐसा विलक्षण शब्द निकलता है कि वो शब्द आकाश में जाता है। शब्द गुणकम आकाशम, ये आकाश का गुण है कि वो शब्द को पकड़े, तो शब्द है वो आकाश का गुण माना गया। इसलिए सबसे पहले आकाश की ओर कहते हैं, देखो आकाश में ये सिद्ध हैं, विमानों में बैठे हुए जाते हैं, उस समय में वे उस शब्द को सुनकर वहीं रुक जाते हैं और अपने आप को उन्हें समर्पित कर देते हैं। और देखो तो सही, जो ही वे शब्द उनके कानों में पड़ते हैं, ऐसी समाधि लगती है, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, अपने देह का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। दूसरी सखी कहती है, ए सखी, क्या उनकी तुम बात करते हो? जब वो मनोहर हंसी से एक बार हंस करके और अपनी बांसुरी को होठ पर रख करके नंद नंदन लोगों के अंदर प्रेम का संचार करने के लिए बांसुरी का नाद करता है, बांसुरी बजाता है, उस समय में इस ब्रज में देखो जितनी गायें हैं, जितने हिरण हैं, जितने और पशु पक्षी हैं, उनका सबका वो चित्त हर लेता है। बेचारे घास खाते 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 घास खाना छोड़ देते हैं, हृदय और धृत करना, कान को एकदम ऊंचा कर लेते हैं, उनकी ऋषियों के समान समाधि लग जाती है। नहीं नहीं, लिखित चित्रमेवासन, मानो ये स्वयं सांस नहीं ले रहे हैं, ये केवल इनका चित्र खड़ा है, मिट्टी के बनाए हुए हों, ऐसे वो मुंह फाड़े फाड़े खड़े रहते हैं। और हे सखी, जिस समय में मोर मुकुट पहना हुआ तरह तरह के वृक्षों के फूलों से जिसका श्रृंगार किया गया है, ऐसा कृष्ण पर्वत के ऊपर खड़ा होकर गोपों के साथ बांसुरी बजाते हुए उन गायों का नाम लेता है, बांसुरी के अंदर नाम लेता है, उस समय में नदियां एकदम जो तेजी से चलती हैं रुक जाती हैं। और इतना ही नहीं, तद पदाम्बुज रजो निलनीतम, उसके चरण कमल का जो पराग है, उसकी जो मिट्टी है, उसको लेने के लिए अपने चंचल तरंगों से आगे बढ़ती है और फिर रुक जाती है। और जब वह आदि पुरुष जंगल के अंदर भटकता हुआ बांसुरी बजाता हुआ गायों का नाम लेता है, उस समय में ये जिनकी ये जितनी वन लताएं हैं जो कि वृक्षों के साथ में मिली हुई है, उस समय में एकदम फल और पुष्प से युक्त होकर सब पर बरसासी करने लग जाती है, मानो वे उस बांसुरी के नाद से प्रसन्न हो जाती हैं। देखो लताएं कैसी खिल जाती हैं, माने जड़ हो, चेतन हो, स्थावर हो, जंगम हो, सब पर उस बांसुरी का प्रभाव पड़ता है। शब्द में अचिंत्य शक्तियां हो, जहां ऋषियों ने भजन किया है, भगवान का नाम लिया है, सत्संग किया है, वहां की धरती और ढंग से दिखाई देती है, वहां के वृक्ष ही और ढंग से दिखाई देते हैं। गंगा जी का पावन तट है, बड़ा पवित्र है, परंतु जहां संतों ने महात्माओं ने सत्संग किया है, जिन वृक्षों के नीचे सत्संग किया है, उसके परमाणु और ही होते हैं। यही बात बताने के लिए कि भगवान की बंसुरी नाद का प्रभाव स्थावर जंगम सब पर बड़े विलक्षणता से पड़ रहा है। हे सखी, जब उसके तिलक लगाया हुआ हो, वनमाला उसने धारण की हो, तुलसी की माला पहनी हो और वनमाला की सुगंध से आकृष्ट होकर हजारों हजारों की संख्या में वे जब भंवरे आते हो, उस समय में वो बंसुरी बजाता हो, तब तो देखो भाई, ये यमुना के अंदर रहने वाले सारस और हंस है, ये सब उस समय में चुप हो जाते हैं। हरिम उपासते ते यत चित्ता हंत मीलित दृशो धृत मौना, आंखें बंद करके मौन होकर के बैठ जाते हैं, भगवान की वे उपासना मानो करते हो। और जिस समय में वो बलराम जी को साथ में लेकर सब लोगों के मन में आनंद का संचार करने के लिए बांसुरी बजाता है, उस समय में आकाश में जो मेघ है, बादल है, वो मंदम मंदम अनुगर्जती, धीरे धीरे बोलता है, कहीं ऐसा न हो कि मैं हमारी उपमा लेने वाला, माने घन के समान श्याम वर्ण है, ऐसा जो कहा जाता है कृष्ण को, ये कृष्ण तो हमारे से इसको उपमान मिलता है और स्वयं उपमेय होता है, तो हमको जो उपमा में लाकर बैठाने वाला है, कहीं इसके स्वर से हमारा स्वर भिन्न न हो जाए, इसलिए वो धीरे धीरे गाता है और ऐसा गाता है कि कहीं इसके स्वर के साथ विपरीत मैं चला गया तो भाई स्वर भंग होगा, और स्वर भंग होने से हम दोनों का जो सानिध्य है उसमें कहीं अंतर न पड़ जाए। तो सूरीधम वे अपना सौहार्द दिखाता है, एक तो छाया के द्वारा कृष्ण को धूप से बचाता है और भीने भीने गर्जना से उस स्वर को और अच्छा बनाकर के चलता है। हे यशोदे, क्या बतावे, उस वाणी को किसने सिखाया है पता नहीं, उसको बंसुरी बजाना किसने सिखाया है पता नहीं, वेणु वाद्य है उसकी बंसुरी की जो तान है वो किसी ने नहीं सिखाया, निज शिक्षा, अपने आप ही वो शिक्षित हुआ है। तुमको पता नहीं यशोदा जी, तुम तो इस काम धंधे में लगी रहती हो, हम तो कभी कभी उस बंसुरी का नाद सुनकर के जंगल में जाती हैं तो देखती हैं कि चार मुख वाला आकर उनके चरणों में गिरता है, और कभी इंद्र आकर के उनके चरणों में गिरता है, और कभी कभी त्रिशूल लिए हुए जाने कौन, गले में सांप लिए हुए आते, वो भी उनके चरणों में गिरते हैं, हमने देखा है। आनत कवये आनत कंधर चित्ता, और अपने चित्त को और अपने गर्दन को उनके सामने झुकाते हुए हमने उनको देखा है। यशोदा जी, निज पदाब्ज दलैर ध्वज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललामयी ब्रज भुव शमयन खुरतोदम, अहो जिस समय में वो चलता है तो गायों के पीछे पीछे क्यों चलता है ये मालूम है, गायों के आगे भी चल सकता है लेकिन पीछे चलता है, क्योंकि पृथ्वी गायों के खुर से बिचारी पीड़ित होती है, उस समय में अपने कोमल कोमल चरणों से पृथ्वी के घाव को पूरा करने के लिए पीछे पीछे चलता है और ऐसी सुंदर बांसुरी की वो तान छेड़ता है कि उस समय में कुजगतिम गमिता न विदाम कश्मलेन कबरम वसनम व, उस समय में उन वृक्षों को भी इस बात का कोई किसी प्रकार से विचार नहीं रहता कि हम पृथ्वी से पैदा हुए हुए हैं, उस समय किसी को कुछ भी पता नहीं रहता है। तो गायों के पीछे चल करके कोमल चरणों से और अपनी बंसुरी के नाद से पृथ्वी के शोक को भी वो दूर करता है। वो मणिधर श्री कृष्ण गायों के पीछे पीछे चल करके जिस समय में बंसुरी का नाद करता है तो क्या बतावे, अनेक गुणों को धारण करने वाला वो भगवान श्री कृष्ण हिरणों को और सबको ऐसे आकृष्ट कर लेता है जैसे हम लोगों को आकृष्ट किया हुआ है। वो नंदनंदन तरह तरह से वेश बनाया हुआ प्राणियों को अपने अंदर आकृष्ट कर रहा है। वाद्य गीत वलि भी परिवब्रूह, उस समय में देवता लोग उनके सामने वंदना करते हैं तो अपने जो वाद्य यंत्र है वो भी वेणु के साथ ही भिने भिने स्वर में ही बजाते हैं, बाकी वे भी वहां पर अपने स्वर को कृष्ण के स्वर से ज्यादा ऊंचा नहीं बजा सकते हैं। इस प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण ये तुम्हारे लाला जब जाते हैं तब ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कोई बड़ा भारी उत्सव हो गया और सबके मन में बहुत आनंद का अनुभव होता है। बदर पांडु वदनो मृदु गंडम मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या, और ऐसी उसकी शोभा है, माने इधर तो शोभा है इधर उनके शब्द है, इन दोनों के द्वारा सारे ब्रज के अंदर आनंद ही आनंद छाया हुआ है। इस प्रकार से हे परीक्षित, ये गोपियां हैं कृष्ण की लीलाओं को गा रही हैं, अपने मन को कृष्ण में अर्पित की हुई है और ये महोदय बहुत पुण्यशाली है, अतः कृष्ण को ले लेकर के कृष्ण का नाम ले लेकर के रूप का ध्यान कर करके और उनके बांसुरी के शब्द को सुनकर के अपने दिन को बहुत ही पवित्र कर रही हैं और बड़े आनंद का अनुभव कर रही हैं। अब ये भगवान की इतनी लीलाएं तो बता दी हैं।
श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद का प्रकरण चल रहा है और अभी श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रेम की सर्वोत्कृष्ट लीला में भगवान के रास लीला प्रसंग को सुनाया था। सुखदेव जी महाराज अब आगे कह रहे हैं कि एक बार अरिष्टासुर बैल बनकर के ब्रज में आया, उसने अपने खुरों से पृथ्वी को क्षत विक्षत कर दिया, पूंछ ऊंचा करके लोगों की ओर दौड़ता था, सबको डराता था, धमकाता था, ऐसा समझ रहे थे अचल शंकया कोई महान पर्वत ही आ गया हो। सारे गोपियां डरने लग गई, गोप डरने लग गए, पशु पक्षी सब भयभीत होकर इधर उधर भाग गए और श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान उस वृषभासुर के सामने जाकर खड़े हो गए, ताल ठोक करके उसने चेतावनी दी कि आओ हमसे लड़ लो, तो वो वृषभासुर भगवान के सामने आया। भगवान उस समय में बड़े सावधानी के साथ उसके सींग को पकड़े और उसको पीछे की तरफ धकेल दिया। इस प्रकार से अष्टादश पदानी से 18 पैर उसको पीछे की तरफ पटक दिया तो फिर वो दोबारा अपने सींगों को सामने रख करके दौड़ा दौड़ा आया। इतने में ही भगवान ने उसके एक लात लगाई और वो वहीं पर गिर गया और सदा के लिए समाप्त हो गया। जब वो वृषभासुर मरा तो नारद जी महाराज नारायण नारायण कहते कहते मथुरा में कंस के पास आए। नारद जी ने कंस से कहा कि कंस जी आजकल क्या हालचाल है आपके। कंस ने कहा कि हमको देवकी का जो आठवां बेटा था उसके बारे में ये सुनने को मिला है कि वही नंद जी का बेटा है। कि हां भाई बात तो यही है
यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च। यशोदा के एक लड़की पैदा हुई थी, वो तुम्हारे हाथ में आई गई थी, और देवकी के कृष्ण पैदा हुआ है, रोहिणी के रोहिणी का बेटा जो बलराम है वो भी इस समय में नंद जी के यहां व्रज में बहुत उछल कूद कर रहा है, तुम्हारे असुरों को उसी ने ही मारा है, और अभी अभी उसने वृषभासुर को भी समाप्त कर दिया है, ये खुशखबरी सुनाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। नारद जी महाराज ने जब ये बात कही, कंस ने अपने म्यान में से तलवार निकाल ली और कहा कि महाराज मैं वसुदेव और देवकी को मारता हूं। नारद जी ने कहा कि क्यों ऐसा करते हो भाई, वसुदेव और देवकी को मारते हो इससे तुम्हारी मृत्यु टलने वाली नहीं है? तो तत्काल उनको ले जाकर के जेल खाने में डाल दिया। पहले भी जेल खाने में डाले थे, तब तो उस कन्या के हाथ से निकल जाने के बाद उसने उन्हें छोड़ दिया था, अब आज वापस उनको जेल खाने में बंद कर दिया। जेल खाने में बंद करने के बाद कंस ने केशी को बुलाया और फिर मुष्टिक है, चाणूर है, इन सबको बुलाया। इन सबको बुला करके कहा, देखो अब आप लोग बलराम और श्री कृष्ण के मारने की तैयारी में लग जाओ। लोगों ने मुझे कहा है कि तुम कृष्ण के द्वारा मरोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पढ़ने में गलती हो गई, कंस के द्वारा कृष्ण मरेगा है तो ये बात लोगों ने पढ़ लिया कि कृष्ण के द्वारा कंस मरेगा, भला मैं भी कभी मर सकता हूं? देखो ऐसा जो भाव है ना कि मैं कभी मर नहीं सकता हूं, ये कंस का भाव है। तो राम कृष्ण ततो मह्यम मृत्यु के लिए निदर्शित है, तो आप ऐसा करो कि एक बहुत बड़ा मंच बनाओ और तरह तरह से कुश्ती के पैंतरे जानने वाले ये मुष्टिक और चाणूर शल तोशल ये सब एक कुश्ती की प्रतियोगिता करो, उस प्रतियोगिता में बलराम और श्री कृष्ण को भी हम बुला लेंगे, और जहां ये प्रतियोगिता होगी उस मैदान के दरवाजे पर एक हम महावत को हाथी दे देंगे, कुवलिया पीर नाम का हाथी दे देंगे, और कह देंगे कि याद बलराम और कृष्ण के आने पर तुम हाथी से ही उन्हें मार देना, यदि वो हाथी से न मरे तो आप लोग अपनी कुश्ती से इसे मार देना। देखो एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ करना है, आरभ्यताम धनुर्यागस्त चतुर्दश्याम यथा विधि, चतुर्दशी के दिन ऐसा इस प्रकार से अपने लोगों को एक धनुष यज्ञ करना है, और ऐसा सब करके और फिर भूतराजा ये मीडुषे और फिर प्रेतराज भूतराज को बहुत मांस चढ़ाएंगे, पशु चढ़ाएंगे, इस प्रकार से सबको आज्ञा दे दी। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को बुलाकर कहा कि हे अक्रूर जी, इस सारी मथुरा में मेरा मित्र, हृदय का मित्र तो आप ही है, आप जैसा कोई दूसरा मेरा हितेशी नहीं है। संसार में मालूम है अक्रूर जी मित्र होता है वो हमारे बिगड़े हुए सारे काम को सुधार देता है, तो आज हमको आपसे कुछ काम है।
क्या काम है भाई?
क्या आप नंद जी के व्रज में जाओ और वहां बलराम और श्री कृष्ण को किसी बहाने से यहां ले आओ, विष्णु का आश्रय लेने वाले देवताओं ने आकाशवाणी से कहा था कि देवकी का आठवां बेटा तुम्हें मारेगा, ये बिल्कुल गलत बात है, उल्टी बात है, होना यही चाहिए कि देवकी के आठवें बेटे को तुम मारोगे, कह दिया ये कि तुमको देवकी का आठवां बेटा मारेगा, कोई बात नहीं, अभी तो वो बालक है, उनको हम मार देंगे तो सारा राज्य हमारे हाथ में आएगा, मेरे यहां पूरी व्यवस्था है, कुश्ती के बहाने से उनको बुलाना है, और जो रंग भूमि है वहां पर हमने हाथी को तैयार कर दिया है, और यदि दरवाजे से न आकर के कहीं और कहीं दीवार फांद करके अंदर आ गए तो हमारे पास बड़े बड़े पहलवान हैं, उन पहलवानों से हम उनको मार देंगे और फिर मैं उग्रसेन को भी मार दूंगा और उसके भाई देवक को भी हम कुछ नहीं मानते, सारी पृथ्वी मेरी हो जाएगी, जरासंध मेरे ससुर हैं वो मेरे पक्ष में, दिविद बानर वो मेरे पक्ष में, शंबरासुर नरकासुर बाणासुर सब मेरे पक्ष में है, सारी पृथ्वी पर मेरा शासन रहेगा और फिर मैं ही एकमात्र सम्राट कहलाऊंगा, मेरा कोई शत्रु नहीं रहेगा। इसलिए आप नंद जी के व्रज में जाओ और जैसे तैसे धनुष यज्ञ को देखने के बहाने से बलराम और श्री कृष्ण को ले आओ। अक्रूर जी ने कहा देखो आप कह रहे हैं वो काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन मनुष्य को ये आशाओं के इतने बड़े बड़े पुल नहीं बनाने चाहिए कि ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा फिर यही हो जाएगा। ऐसे मनुष्य को आगे से आगे आशाओं के पुल बनाने पर बड़ा भारी धक्का लगता है। सिद्ध सिद्धियो समम कुरिया दैवम ही फल साधनम, सिद्धि और असिद्धि में हमारा पुरुषार्थ इतना काम नहीं करता जितना हमारा भाग्य काम करता है। हमारा पुरुषार्थ का काम तो यहां केवल कार्य को संपादित कर देना इतना ही है, काम को करने में तो कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन काम के करने के बाद हम चाहते हैं वैसा ही फल मिले ये हमारे भाग्य की बात है। तो जो मनुष्य बड़े बड़े मनोरथ बनाता है और अंत में भाग्य उसका साथ नहीं देता है तो उसको भाई बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। आपकी आज्ञा बहुत अच्छी है, बलराम और श्री कृष्ण को लाने की बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अक्रूर जी महाराज तो अपने घर आ गए और कंस अपने महल में चला गया। इधर कंस ने केशी को भेजा था, केशी नाम का एक ऐसा असुर था कि जो घोड़ा बनकर के और तरह तरह से लोगों के सामने पुरुषार्थ कर सकता था, तरह तरह से कार्य कर सकता था। तब वो केशी गया ब्रज में और बहुत विशाल काय वाला होकर के जब वो ब्रज में जाकर लोगों को कष्ट देने लगा तो सब उससे घबरा गए। विशाल उसके नेत्र हैं, बड़ा भारी उसका मुख है और उसका गला भी बहुत बड़ा है, पूंछ भी बहुत लंबी है, पैर भी उसके बहुत लंबे हैं, विशाल उसकी आकृति। कहते जगान पद्म्याम अरविंद लोचनम दुरा सदस्चंड जवो दुरात्यय, कहते ऐसा विचित्र उसका पराक्रम कि कोई उसके सामने टिक न सके। जब कमल नेत्र भगवान उसके सामने गए तो भगवान की तरफ हिन हिनाता हुआ दौड़ा दौड़ा आया। जो ही वो दौड़ा दौड़ा आया तो भगवान ने जोर से उसके धक्का दिया। कहते हैं धनुषतान तरे, सो धनुष वो पीछे चला गया। सो धनुष कितना होता है, एक धनुष में चार हाथ होते हैं तो सो धनुष में 400 हाथ, वो 400 हाथ पीछे पट पड़ गया और वहां वो मूर्छित हो गया। व्यवस्थित है माने मूर्छित है। और जब वो थोड़ी देर के बाद फिर होश में आया तो अब वो कृष्ण की तरफ मुंह फैला करके आया तो भगवान ने अपनी भुजा थी है जैसी की जैसी उसके मुंह में दे दी। और वो इससे पहले कि भगवान को खाता, भगवान ने अपनी भुजा को ऐसा बढ़ा लिया ऐसा बढ़ा लिया कि देखते देखते ही उसके श्वास रुक गए और प्राण पंखेरु वहीं पर उड़ गए। जो ही उसके प्राण पंखेरु उड़े तो देवताओं ने दुंदभियां बजाई, फूलों की वर्षा कर दी, निहाल कर दिया, ऐसा केशी मारा गया।